नमस्कार, यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या यशवाणीमध्ये आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, ज्ञानगंगा घरोघरी हे ब्रीदवाक्य घेऊन आम्ही आपल्यापर्यंत शिक्षणाचा प्रसार केलेला आहे. या ज्ञानाच्या गंगेत आपणही सहभागी व्हा आणि रोज ऐका 12 वाजेपासून यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचं यशवाणी. यामध्ये विविध विषयावर आपण आमच्या मार्गदर्शनपर कार्यक्रम ऐकत असतात. विविध तज्ज्ञ आपल्याला त्याविषयी मार्गदर्शन करत असतात. यासाठी आपण आमची वेबसाईट ओपन केली आहे ycmou.digitalyuniversity.ac. ऐकत रहा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचं यशवाणी. यशवाणी कार्यक्रम आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी तांत्रिक सहाय्य आहे गिरीश गवळी यांचं, निर्मिती सहाय्यक धनंजय देशमुख, तंत्र निर्देशन अभय कुलकर्णी यांचं आणि कार्यक्रम संयोजक आहेत प्रकाश सापनर सर. आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण जगज्योती माहुल या आपल्याला इंट्रोडक्शन इन जामा प्रोग्रामिंग याविषयी सविस्तर मार्गदर्शन करणार आहेत. त्यांचं शिक्षण कॉम्प्युटर सायन्समध्ये BSc IT शिवाय MCA MPhil त्यांनी केलेलं आहे आणि यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाच्या ज्युनियर कन्सल्टंट म्हणून त्या काम करत आहेत. आता आपण त्यांच्याकडे वळूया. मॅडम नमस्कार.
नमस्कार मॅडम.
आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपलं स्वागत. आज आपण इंट्रोडक्शन इन जावा प्रोग्रामिंग इसके बारे में बताने वाले है, तो उसमें क्या आएगा?
मैम एक्चुअली सबसे पहले तो जावा के बारे में बात करने से पहले हमें जानना होगा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में. तो उसके फीचर्स अपन पहले थोड़ा समझेंगे,
ठीक है?
फिर उसके बाद में अपन जावा का इंट्रो, उसका हिस्ट्री कैसे डेवलप हुआ और कैसे कंपाइल होता है, इसमें प्रोग्राम कैसे, सिंपल एक प्रोग्राम,
ओके,
वो सब करेंगे.
ठीक है, कंटिन्यू मैडम.
ठीक है मैम. तो जावा जानने से पहले वी मस्ट नो अबाउट दी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स सम फीचर्स और सम कंसेप्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मीन्स व्हाई वी आर यूजिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. एक्चुअली कैसा होता है, सी प्रोग्रामिंग के बाद जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप की गई है वो सभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट पर वर्क करती है. सी वर्क करती थी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर. मीन्स उसमें कैसा है कि हम फंक्शंस बनाते हैं, प्रोसीजर्स बनाते हैं और उन्हीं पर एम्फोसाइज करते हैं, डेटा उन्हीं के अंदर होता है. मगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वी एम्फोसाइज इज ऑन ऑब्जेक्ट. हम डेटा को और फंक्शन को एक यूनिट में बाइंड करके रखते हैं और यूजर को डेटा और फंक्शन से कोई मतलब नहीं होता, उसे ऐसा कुछ नहीं करना होता है और कॉम्प्लेक्सिटी बिल्कुल हाइड करते हैं और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हम यूजर को देते हैं यूज करने के लिए. तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग. इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं तो बहुत सिक्योर प्रोग्रामिंग होती है क्योंकि डेटा हमारा बहुत सिक्योर हो जाता है. और इस कंसेप्ट में सबसे अच्छी बात यह कि हम इसमें एक्सेस मॉडिफायर यूज करते हैं. मतलब जो डेटा पब्लिकली यूज किया जाना चाहिए बस वही डेटा पब्लिकली यूज होता है. जो डेटा हम प्राइवेट रखना चाहते हैं वो डेटा प्राइवेट रहता है, इसलिए इस प्रोग्रामिंग का हम यूज करते हैं. तो ये कंसेप्ट है जिस पर कि C++ और जावा वर्क करते हैं. तो अभी हमें जावा पढ़नी है, पर इसके पहले हम कुछ फीचर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के देख लेते हैं, ठीक है मैम? जैसे कि कुछ फीचर्स, कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं जिन पर कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क करता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म एंड इनहेरिटेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द एब्स्ट्रैक्शन? एब्स्ट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, एक सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ, जस्ट हाइडिंग द कॉम्प्लेक्सिटी और द डिटेल फ्रॉम द यूजर्स एंड जस्ट शो द यूजेबल थिंग टू हिम. इसको बोलते हैं हम एब्स्ट्रैक्शन. एक जनरल लाइफ का एग्जाम्पल दें हम तो जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी का स्विच बोर्ड, अगर हमें फैन ऑन करना है तो हम सिर्फ स्विच ऑन करते हैं, या कोई भी मशीन ऑन या ऑफ करनी होती है तो स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं. बट इसके बैकग्राउंड में क्या वर्क करता है उसे जानने की कोई जरूरत नहीं है कि करंट कैसे फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ रहे हैं, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक का कोई भी कंसेप्ट जानने की जरूरत नहीं। तो सेम ऐसे ही हमें यहाँ पर अगर जैसे हमें इनपुट लेना है, आउटपुट लेना है, या मैथमेटिक्स का कोई भी फंक्शन यूज करना है, जैसे कि हमें पावर कैलकुलेट करना है या स्क्वायर रूट, तो हम सीधे सीधे ऑब्जेक्ट पर कॉल करते हैं। हमें उस ऑब्जेक्ट के लिए कौन सा फंक्शन लिखा गया है, कौन सी क्लास बनाई गई है, वो सब जानने की जरूरत नहीं होती। तो इस फीचर को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। तो यूजर को इसमें ये इतना इजी रह जाता है कि उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना पड़ता है और उससे पूरी कॉम्प्लेक्सिटी प्रोग्रामिंग की उससे हाइड की जाती है। इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं। सेकेंड थिंग होता है एनकैप्सुलेशन। अब एनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है कि जिसमें कि हम जो भी हमारा डेटा है और फंक्शन उसे बाइंड करके रखते हैं, और बाइंड करके क्योंकि हमें ये यूजर से हाइड करना है तो उन्हें हम एक यूनिट में रखते हैं। जैसे कि हम किसी भी कैप्सूल के अंदर जो मटेरियल होता है, हमें मटेरियल की जरूरत होती है, मगर वो मटेरियल हम वो मेडिसिन हम वैसे नहीं खाते, हम उसे एक कवर के एक होल के अंदर पैक करके रखते हैं। तो सेम इट इज, यहाँ पर डेटा और फंक्शंस जो होते हैं वो हम एक यूनिट है, क्लास जिसे बोलते हैं, उसके अंदर हम उन्हें बाइंड करके रखते हैं, और फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट बना करके मीन्स उसका इंस्टांस बना करके ये डेटा और फंक्शंस को कॉल करते हैं एकदम सिंपल तरीके से। तो दैट इज कॉल्ड एनकैप्सुलेशन। नाउ थर्ड वन इज पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म इज सिंपलेस्ट वे अगर कहा जाए तो वन थिंग इन मेनी फॉर्म। मीन्स हम कोई भी एक फंक्शन अगर हम बनाते हैं तो सेम नेम का हम फंक्शन दूसरा भी बना सकते हैं, तीसरा भी बना सकते हैं, चौथा भी बना सकते हैं। बट व्हाट इज द डिफरेंस कि कंपाइलर कैसे जानेगा, वी हैव टू पास द डिफरेंट पैरामीटर्स। कैसे होता है, जैसे कि इन जनरल लाइफ की बात करें मैम अगर अपन, तो जैसे मैं अभी यहाँ पर पढ़ा रही हूँ, मैं लेक्चर दे रही हूँ, तो आई एम प्लेइंग अ रोल फॉर गिविंग द लेक्चर। सेम इट इज अगर मैं अपने ऑफिस में कुछ काम कर रही हूँ तो मैं अपने उस काम करने के लिए रोल प्ले कर रही हूँ। मतलब पर्सन एक ही है मगर अपनी लाइफ में अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो सेम वैसे ही हम यहाँ पर एक ही प्रोसीजर या डेटा एक ही बनाते हैं मगर उसके रोल डिफरेंट। तो जहां जहां जैसा यूज आता है यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली हम वैसा उसको यूज कर सकते हैं। और पॉलीमॉर्फिज्म ना दो तरीके से होती है, फंक्शन ओवरलोडिंग करके भी हम कर सकते हैं, ऑपरेटर ओवरलोडिंग करके भी हम कर सकते हैं। मतलब ये स्टैटिक और रन टाइम, ये हम जब बहुत आगे हम जब जावा पढ़ेंगे तो इन फीचर्स को एग्जांपल ले लेकर अच्छे से समझेंगे तब। नाउ नेक्स्ट वन इज इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस क्या होता है, इनहेरिटेंस का सिंपल मीनिंग होता है मदर टू चाइल्ड। मीन्स द सम बेसिक फीचर्स which are coming from mother to child. Here we are using super classes or base classes. Means कोई भी एक क्लास है जिसकी की reusability करने के लिए, actually inheritance depend करता है only on reusability पर। मतलब हमें हमारी programming language की और programs की reusability बढ़ानी है, इसलिए हम यूज करते हैं इनहेरिटेंस। कि हम चाहते हैं कि एक बार कोई अगर हमने डेटा फंक्शंस डिफाइन कर दिए तो हमें बार बार उसे डिफाइन करने की, बार बार डेफिनेशन देने की जरूरत ना पड़े। तो इसके लिए किसी क्लास में हम उसे डिफाइन कर देते हैं और उसे फिर दूसरे क्लासेस में कॉल कर लेते हैं, उससे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए कि हम व्हीकल नाम की एक क्लास बनाते हैं और उस व्हीकल क्लास के अंदर जितने भी व्हीकल होते हैं, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, तो उनके जो भी बेसिक फीचर्स होते हैं वो सब डिफाइन किए हमने व्हीकल क्लास में। अब हमें ये बेसिक फीचर्स जब हम टू व्हीलर नाम की एक क्लास बनाएंगे और फोर व्हीलर नाम की क्लास बनाएंगे तो वहां दोबारा नहीं लगाने पड़ेंगे। हम सीधे सीधे व्हीकल वाली जो क्लास बनाई है पहले उससे उन फीचर्स को डेराइव कर लेंगे। और इस तरीके से ये टू व्हीलर और फोर व्हीलर जो क्लासेस है डेराइव क्लासेस या सब क्लासेस कहलाएंगे। मीन्स हमने हमारे प्रोग्राम की रीयूजेबिलिटी बढ़ाई है। बहुत तरीके के वेरियस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इज अवेलेबल। फिलहाल हम अभी सिर्फ ये इनहेरिटेंस को इतना ही रखते हैं और हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज इसलिए कर रहे हैं। और हाँ, रीयूजेबिलिटी में ऐसा भी है कि जरूरी नहीं है जो भी फीचर्स हम चाहें बस वही हम यूज करेंगे ना, वही रीयूजेबल करेंगे, तो उनको हम पब्लिकली डिफाइन करते हैं। जो प्राइवेट डिफाइन करते हैं उन फंक्शंस को हम नहीं कॉल कर सकते, तो वो सिक्योरिटी वाले सिक्योरिटी के बेस पर सिक्योरिटी एम्फसाइज जब हम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ऐसा रहता है। देन ये तो कुछ बेसिक कंसेप्ट थे जो मैंने बताए कि जावा
मैडम
पहले।
हेलो।
हाँ मैम,
आपका फोन ऐसे हिल रहा है क्या?
फोन नहीं मैम, अभी ठीक है। एक्चुअली
अभी आ रहा है आवाज, कम हो गया था एकदम।
ओके, अभी ठीक आ रहा है।
ओके
ओके मैम, तो अभी हम आगे बढ़े।
हाँ
ओके, तो ये मैंने थोड़ा इंट्रो आपको बताया अभी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट के बारे में। अब हम शुरू करते हैं जावा प्रोग्राम के बारे में कि जावा एक्चुअली है क्या और लैंग्वेज क्यों यूज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज क्यों करते हैं? कुछ स्टूडेंट्स के मन में कई बार C++ तक पढ़ लेते हैं फिर भी उनको ऐसा लगता है कि व्हाई वी आर यूजिंग दिस लैंग्वेजेस। एक्चुअली व्हाई वी आर यूजिंग बिकॉज वी हैव टू क्रिएट सम सॉफ्टवेयर फॉर एप्लीकेशन डेवलपमेंट और अपने यूजर डिफाइंड टास्क कंप्लीट करने के लिए कुछ एप्लीकेशन हमें बनानी पड़ती है। तो वो एप्लीकेशन हम कंप्यूटर को कैसे बताएं? वो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को कैसे समझाएंगे? और कंप्यूटर को भी समझा देंगे तो प्रोग्रामर को कैसे समझेगा या यूजर को कैसे समझेगा? क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन लैंग्वेज समझता है ना, और यूजर और या प्रोग्रामर या ह्यूमन बींग जो है वो यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज समझेंगे। तो पहले ये सब काम अपन मशीनी लैंग्वेज में ही करते थे जो कि बहुत टफ होता था प्रोग्रामर के लिए। फिर हमने असेंबली लैंग्वेजेस बनाए। असेंबली लैंग्वेज में क्या किया कि थोड़े जो इंस्ट्रक्शन थे उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, मतलब मेनोनॉमिक और यूजर की लैंग्वेज में लिख दिया, तो वो समझ में आने लगा कि इसका मतलब ये है, इसका मीनिंग ये है। फिर हम वो मशीन में फीड करते थे और जो भी यूजर की लैंग्वेज में हमने बनाए थे मेनोनॉमिक उनको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते थे, जिसके के लिए हमें लगता था असेंबलर। मींस एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए जो कन्वर्टर था उस वक्त उसे हम कहते थे असेंबलर। फिर उसके बाद हमने हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज का यूज किया। हाई लेवल लैंग्वेज में हम क्या करते हैं कि पूरा प्रोग्राम हम यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखते हैं, ठीक है, और उसको हम फिर मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, जिसके के लिए कॉमनली हम कंपाइलर यूज करते हैं।
ओके,
मींस जैसे सी का कंपाइलर होता है, C++ का कंपाइलर होता है, तो वो कंपाइलर क्या करता है, वो वर्क करता है एज ए ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर मींस वो यूजर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज को मशीनी कोड में कन्वर्ट करता है और जितने भी सिंबल्स हैं उनको कन्वर्ट करता है, वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस एलोकेट करवाता है, वो सब काम कंपाइलर का होता है। फिर मशीन को जब समझ में आ जाता है, मींस हार्डवेयर को जब समझ गया कि यहाँ यहाँ पे स्पेस एलोकेट करनी है और अब इस डेटा का इस तरीके से उस पे फंक्शंस परफॉर्म करने, तो फिर रिजल्ट देता है। तो जावा में भी ऐसा ही होता है, और पर जावा में सबसे अच्छी बात ये होती है कि हम सिर्फ कंपाइलर यूज नहीं करते, यहाँ पे हम इंटरप्रेटर भी यूज करते हैं। मेनली दो तरीके के ट्रांसलेटर होते हैं, एक कंपाइलर और एक इंटरप्रेट. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन देम? क्या होता है, कंपाइलर एक ही बार में, एक ही मीन सिंगल पास के अंदर पूरा प्रोग्राम रीड करता है, देन उसको कन्वर्ट करता है मशीनी कोड में, और जितनी भी एरर होती है सिंटैक्स एरर वो एक ही साथ हमें शो करता है. बट इंटरप्रेटर का कैसा है कि वो लाइन बाय लाइन चेक करता है. सपोज करो प्रोग्राम के फर्स्ट लाइन में ही अगर कुछ सिंटैक्स एरर है तो वो इंटरप्रेटर वहीं रुक जाएगा, नीचे का पूरा प्रोग्राम इट विल नॉट चेक. वो केवल फर्स्ट लाइन चेक करेगा. जब तक हम फर्स्ट लाइन की एरर दूर नहीं करेंगे, रिजॉल्व नहीं करेंगे, तब तक वो सेकंड लाइन पर नहीं जाएगा. मीन्स जब लाइन बाय लाइन चेकिंग होती है तो इट वर्क्स विद इंटरप्रेटर, और जब पूरा एक ही सिंगल पास में चेक होता है तो इट वर्क ऑफ कंपाइलर. ठीक है, जावा में हम दोनों यूज करते हैं. और क्यों ऐसा किया गया, एक्चुअली जावा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी ना वो रियल वर्ल्ड के एप्लीकेशंस के लिए बनाई गई. बेसिकली जावा डिजाइन करने के पीछे कंसेप्ट था कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उन पे उनको एक कॉमन लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जा सके. लाइक जैसे कि टीवी और कंट्रोलर को एक ही लैंग्वेज दी जाए जिससे कि वो वर्क कर सके, या मशीन में जैसे किचन में माइक्रोवेव यूज होता है, टोस्टर यूज होता है, तो इन सब पे जो प्रोग्रामिंग की जाए ना, तो उसके लिए जावा को बनाया गया था. तो इन सन 1991 में सन माइक्रोसिस ने जावा बनाई थी. जिस वक्त की ये जावा का नेम वॉज नॉट जावा, इट वॉज इंट्रोड्यूज एज ओक, ओ ए के ओक, ओक लैंग्वेज. ओके, देन उस वक्त ये लैंग्वेज बहुत स्मॉल, सिंपल एंड पोर्टेबल भी थी. पोर्टेबल तो होना ही पड़ेगा क्योंकि उसको अलग अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए बनाया गया था, उनकी प्रोग्रामिंग करने के लिए. ओके, बट उससे भी बहुत अच्छा यूज जावा का वर्ल्ड वाइड वेब पे हुआ, www पर. मीन्स जावा इज ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच वी कैन डेवलप एप्लीकेशन एज वेल एज वेब पेजेस. हम यहाँ पर एप्लेट बनाते हैं और एप्लेट इंडिपेंडेंट कोड होते हैं जो कि हम नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, नेट पे अपलोड कर सकते हैं. गेम वगैरह जावा में बहुत अच्छे बनते हैं, मल्टीमीडिया जावा में बहुत अच्छा कर सकते हैं. तो ये ओक बनने के बाद धीरे धीरे जावा में इतने सारे चेंजेस किए गए, नए नए वर्जन उसमें डाले गए. तो 1993 में जब जावा को वेब पेजेस बनाए गए, तब से जावा मतलब www पर ज्यादा यूज होती है. मीन्स वेब बेस्ड प्रोग्रामिंग के लिए बहुत ज्यादा यूज करने लगे. देन इन 1995 यहाँ पर जब हमने जावा को एज ए इंट्रोड्यूस किया गया वेब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तब उसके साथ नेटस्केप नेविगेटर वाला जो वेब ब्राउजर है उसके साथ मिलकर के और उस कंसोर्टियम के साथ दिया गया था. देन फिर धीरे धीरे स्लोली स्लोली उसके बहुत सारे वर्जन आने लगे. हमने उसमें JVM वगैरह सब लगाया और 96 में, 2006 में. नाउ फाइनली लास्ट जो अपडेशन हमने किए थे जावा के वो 2006 का जो है उसके अंदर जावा का एक एडिटर आता है, नेट बिल IDE, वो भी सन का ही एक ओपन सोर्स है. तो उसके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं जावा की, और उसमें सब कुछ बिल्ट इन होता है, इसके बारे में भी अभी हम बताएंगे आपको. ठीक है, तो जावा का ये केवल हिस्ट्री है कि इसे इतना ध्यान रखना होता है कि जावा बेसिकली डेवलप की गई थी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देने के लिए. फिर धीरे धीरे उसको इन 1993 में उसे वर्ल्ड वाइड वेब के पर यूज किया गया. फिर 1995 में उसका नेम एज ए जावा अनाउंस किया गया नेटस्केप के साथ. मिल करके। फिर उसमें हम अभी तक वर्क करते थे जेडीके के साथ, जावा डेवलपमेंट किट के साथ, अलग अलग वर्जन थे जिनमें कि जेडीके क्या होता है कि लाइब्रेरी होती है, जैसे कि हमने जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करनी है तो उसमें बहुत लाइब्रेरी के अंदर ऑलरेडी बनाए गए फंक्शंस, ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस हैं जिनको कि हम सीधे सीधे कॉल करते हैं, जो हमने अभी आपको कंसेप्ट बताया था एब्स्ट्रैक्शन एंड कैप्सुलेशन का, तो वो सब हमने उस लाइब्रेरी के अंदर डिफाइन किया हुआ है, है ना। उस वहां पर एक एपीआई होता है, उसके अंदर हमने सब कुछ डिफाइन किया होता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट कॉल करने होते हैं। तो वो भी अभी आगे उसके बारे में और डिस्कशन हम कर लेते हैं। तो इसके लिए अगर हम
हेलो
हाँ जी, तो इसके लिए आगे बढ़ने के पहले अगर हम थोड़ा ब्रेक ले तो इट विल बी
ठीक है मैडम। ठीक है विद्यार्थी मित्र मित्रांनो, आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण इंट्रोडक्शन इन जामा प्रोग्रामिंग या विषयी सविस्तर मार्गदर्शन ऐकत आहात। आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत जगज्योती माहुल मॅडम। ऐकत रहा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचं यशवाणी। यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचं आपण ऐकत आहात यशवाणी। विद्यार्थी मित्र मित्रांनो, आजच्या यशवाणीमध्ये इंट्रोडक्शन इन जावा प्रोग्रामिंग याविषयी आपल्याला मार्गदर्शन करत आहेत जगज्योती माहुल मॅडम। मॅडम आपने अभी तक प्रोग्रामिंग के बारे में बताया, अभी आगे क्या बताएंगे?
हाँ, अभी आगे हम जावा में कैसे प्रोग्रामिंग करते हैं और जावा का क्या कंसेप्ट है वो अपन करेंगे।
ठीक है,
अभी अपन ने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो अभी अपन सीधे सीधे अपने जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं।
ठीक है,
ओके। अब कैसे होता है मैम, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते हैं उसे मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, जिसके के लिए कंपाइलर यूज करते हैं, यूजुअली कंपाइलर यूज करते हैं, मगर जावा में कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ही यूज आते हैं।
ओके,
वो क्यों यूज आते हैं? क्योंकि जावा को हम प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं, कि जावा में बनाया गया कोई भी प्रोग्राम किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम और किसी भी मशीन पर एकदम प्रॉपरली रन हो सके। इसलिए हम इसमें हमने कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों यूज किए। अब दोनों का वर्क तो एज ए ट्रांसलेशन का है, मगर यहाँ पे कुछ चेंजेस हैं। जावा में क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो सोर्स प्रोग्राम होता है जो कि यूजर के अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में लिखा हुआ है उसे जावा का कंपाइलर कंपाइल करके बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। यहाँ एक ये न्यू टर्म है बाइट कोड। अब बाइट कोड को इंटरप्रेटर मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो मीन्स अभी कैसे हुआ कि ये जो लैंग्वेज है ना प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गई, क्योंकि वो बाइट कोड तो सब जगह सेम ही रहेगा ना, और फिर उस बाइट कोड को कन्वर्ट करना होगा मशीनी लैंग्वेज में, जो भी पर्टिकुलर मशीन का आर्किटेक्चर है उसके अकॉर्डिंगली चेंज किया जाएगा। मीन्स हमें उस प्रोग्राम को कहीं भी रन करने के लिए कुछ चेंजेस नहीं करने होंगे, वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन हो जाएगा। और इसमें सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमने पहले हमारे प्रोग्राम को बाइट कोड में कन्वर्ट किया है और वो बाइट कोड पोर्टेबल होता है, उसे कहीं भी ले जाया भी जा सकता है, और उसे मशीनी कोड में फिर चेंज करके उस पर्टिकुलर मशीन के अकॉर्डिंगली चेंज करके और अपने प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जावा का स्ट्रांग फीचर यही होता है कि यहाँ पे इसे प्रोग्राम्स में बाइट कोड में कन्वर्जन होता है, जो कि कंपाइलर करता है और फिर उस बाइट कोड को इंटरप्रेटर मशीनी कोड में चेंज करता है। और एक्चुअली वो मशीनी कोड ऐसा नहीं होता है कि वो पर्टिकुलर मशीन के लिए हो। हर मशीन के अंदर एक एक्स्ट्रा वर्चुअल प्रोसेसर लगा होता है, जावा प्रोसेसर कह सकते हैं उसे, या जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं उसे, JVM। तो क्या होता है कि जावा बाइट कोड इज अ मशीन इंस्ट्रक्शन और जावा प्रोसेसर चिप। बाइट कोड वो है जो कि कंपाइलर ने कन्वर्ट किया है, ठीक है। सोर्स प्रोग्राम को पहले कंपाइलर ने कन्वर्ट किया, किसमें कन्वर्ट किया, बाइट कोड के अंदर। और बाइट कोड आर व्हाट आर द बाइट कोड, मशीन इंस्ट्रक्शन फॉर अ जावा प्रोसेसर चिप कॉल्ड द जावा वर्चुअल मशीन, JVM, इसे शॉर्ट में बोलते हैं JVM। तो JVM इज जावा वर्चुअल मशीन, एंड दिस जावा वर्चुअल मशीन इज स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म हर अलग अलग सिस्टम के लिए, हर अलग अलग मशीन के लिए होता है। ओके, एक्चुअली जावा इंटरप्रेटर इज नोन एज जावा वर्चुअल मशीन, क्योंकि बाइट कोड को कन्वर्ट करने के लिए हम जावा इंटरप्रेटर का यूज करते हैं, तो उसी को ही जावा वर्चुअल मशीन कहते हैं। और द मशीन लैंग्वेज फॉर जावा वर्चुअल मशीन इज कॉल्ड बाइट कोड, क्योंकि वो बाइट कोड को ही कन्वर्ट करता है। और ये JVM में होता क्या है एक्चुअली, जो कि वो कन्वर्ट करता है, JVM कंबाइंस दी जावा APIs, APIs मीन्स एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मीन्स ये वो एक एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करवाता है, जहां पर कि हम जावा का प्रोग्राम लिखें, और जिसके के अंदर मीन्स जैसे पहले हम JVM API के पहले ना JDK यूज करते थे, JDK के अंदर जावा डेवलपमेंट किट, तो उसके अंदर भी वही होता है, इसमें जावा API होता है उसमें भी। तो API का मतलब है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, मीन्स दीज आर दी लाइब्रेरीज ऑफ कंपाइल्ड कोड दैट कैन बी यूज इन योर प्रोग्राम।
ओके,
मीन्स वी कैन से कि जावा API कंसिस्ट ऑफ फंक्शंस एंड वेरिएबल्स दैट प्रोग्रामर्स आर अलाउड टू यूज इन देयर एप्लीकेशन, मीन्स वो जो टेलर मेड कुछ फीचर्स है, कुछ फंक्शंस है, ऑटोमेटिकली बाय कॉलिंग दी ऑब्जेक्ट यूजर उनको यूज कर सकता है उनके प्रोग्राम में। यूजर को ऐसे बहुत सारा प्रोग्राम, बहुत सारा कोड लिखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये सब API के अंदर डिफाइन होता है। वी कैन से C++ में जैसे हम लाइब्रेरी होती थी ना, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज होती हैं, इनपुट आउटपुट के लिए होती है, जैसे stdio.h होती है इनपुट आउटपुट के लिए, सेम वैसे यहाँ पे भी APIs होती है। ये वो लाइब्रेरीज हैं जिनमें की बहुत सारी क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं ऑलरेडी डिफाइंड, ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, तो सिर्फ उनको कॉल करना होता है यूजर को और कुछ नहीं।
ओके,
ठीक है। तो अभी आई थिंक इट विल टाइम टू बी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जावा।
ओके,
अभी ये सब क्लियर हुआ होगा JVM के बारे में, बाइट कोड के बारे में, कंपाइलर इंटरप्रेटर के बारे में। तो फिर से एक बार रिवाइज कर देती हूँ।
ओके,
जावा का जो भी सोर्स कोड होता है, जो भी प्रोग्राम हमने लिखना होता है, वो प्रोग्राम लिख करके पहले कंपाइलर उसे कंपाइल करता है। जब कंपाइलर कंपाइल करता है तो उसे बाइट कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर उस बाइट कोड को इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करके मशीनी लैंग्वेज में चेंज करता है। इसी इंटरप्रेटर को हम बोलते हैं JVM, जावा वर्चुअल मशीन, जो कि फिजिकल पार्ट है, मतलब जावा प्रोसेसर चिप होती है ये एक, है ना, जो कि प्रोसेसर के में होती है, हर प्रोसेसर में होती है। एंड यहीं पर JVM में ही जावा APIs होती है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जिसमें कि लाइब्रेरीज है। इस लाइब्रेरी में बहुत सारी क्लासेस हैं, फंक्शंस हैं, ऑब्जेक्ट हैं, प्री डिफाइंड ऑलरेडी प्रोसेस किए हुए, जो कि यूजर की जरूरत के अकॉर्डिंगली ही कैन कॉल देम इन हिज प्रोग्राम। ठीक है, तो नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जावा, ड्यू टू दिस बाइट कोड फीचर जावा की कैरेक्टरिस्टिक बहुत बढ़ जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट वंस रन एनीवेयर, ये बहुत अच्छा फीचर हुआ जावा में, क्योंकि हमें प्रोग्राम एक ही बार लिखना पड़ेगा और हम क्योंकि उसे बाइट कोड है उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, इसलिए किसी भी मशीन पे उसे वो ले जा सकते हैं, वो पोर्टेबल है। पोर्टेबल किसी भी प्लेटफॉर्म पर रन कर सकते हैं और किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे कर सकते हैं, चेंजेस की जरूरत नहीं, इसलिए एक ही बार प्रोग्राम हमें लिखना होता है और हम उसे कहीं भी रन कर सकते हैं। सेकेंड वन इज लाइट वेट कोड। अब लाइट वेट कोड क्यों? बिकॉज ह्यूज अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस वी हैव रिटन इन दैट API। ओके, तो सिर्फ यूजर को, प्रोग्रामर को, उसे सिर्फ ऑब्जेक्ट को कॉल करना है, ना कि दोबारा लिखना। और मोस्ट ऑफ दी प्रोग्रामिंग हम वो कॉल करके, क्लासेस को यूज करके, इनबिल्ट जो है उनको यूज करके ही हो जाती है, तो हमें कोडिंग कम करनी पड़ती है और लाइट वेटेड कोडिंग करनी पड़ती।
ओके,
एंड सिक्योरिटी, ऑब्वियसली जावा इज मोर सिक्योर देन एनी अदर लैंग्वेज बिकॉज इट्स यूजिंग कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर। बाइट कोड इज अ वेरी सिक्योर कोड, वी कैन से, दैट्स वाई जावा इज प्रोवाइडिंग मोर सिक्योरिटी फीचर। देन बिल्ट इन ग्राफिक्स, क्योंकि हमने इसके API के अंदर इतनी सारी लाइब्रेरीज, इतनी सारी क्लासेस ली हैं, तो यहाँ पे हमने बिल्ट इन ग्राफिक्स फीचर्स भी डाले। इतने सारे बिल्ट इन ग्राफिक्स फीचर्स हैं कि हम वर्ल्ड वाइड वेब जब बनाते हैं, वेब पेजेस जब बनाते हैं, तो वो भी बहुत इजीली बना सकते हैं।
ओके,
मल्टीमीडिया भी हम इसमें यूज कर सकते हैं, ऑडियोज, वीडियोज, एनिमेशन एंड ग्राफिक्स, किसी भी इंटरनेट एनवायरमेंट में हम उन्हें डायरेक्टली कॉल करके यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। देन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज तो है ही, सी के बाद जितनी भी लैंग्वेजेस बनी है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रोग्रामिंग हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होगी उतनी ज्यादा हम उसके अंदर प्रोग्रामिंग रियल वर्ल्ड में कर सकते हैं, रियल वर्ल्ड की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कर सकते। एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है ड्यू टू दी वाइट कोड, एंड ओपन प्रोडक्ट है, मीन्स जावा फ्रीली अवेलेबल हो जाती है सन के वेबसाइट पर, ऐसा कुछ नहीं। फ्रीली अवेलेबल का मतलब पहले JDK में काम होता था, अभी इसका एक वेब क्या कहें उसे एडिटर, वी कैन से एडिटर पे अभी हम जावा का काम करते हैं, जैसे कि नेटबीन बोलते हैं, और वो जो एडिटर होता है वो IDE होता है। IDE मतलब कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। इसके पहले कैसे होता था मैम कि हम जावा जब इंस्टॉल करते थे अपने सिस्टम पर तो एक JDK 1.2 करके एक फोल्डर होता था, वो हमारे सिस्टम पर आ जाता था, और हमें प्रोग्रामिंग करनी होती थी नोटपैड के अंदर या किसी भी ऐसे एडिटर पर, और फिर हम .java करके फाइल को सेव करते थे एक्सटेंशन। मगर जब से ये हम नेटबीन यूज करने लगे हैं तो हमें किसी नोटपैड की जरूरत नहीं होती, वहां हमें ऑलरेडी इनबिल्ट सब कुछ मिलता है। और इसलिए इसको ना IDE बोलते, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट हम इसे क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर हमने टूल बार लगाया हुआ है, कंट्रोल बॉक्स लगाया हुआ है, केवल इसी एडिटर पर ही यूजर कैन प्रोग्राम एज वेल एज एग्जीक्यूट दी प्रोग्राम। पहले कैसे होता था, JDK में के लिए हमने नोटपैड पे प्रोग्राम लिखा, देन डोज प्रॉन्ट पे जाकर के हमें रन करना पड़ता था। रन के लिए भी पहले उसे कंपाइल करना पड़ता था, देन फिर उसे इंटरप्रेट करना पड़ता था, देन फिर हम उसे एग्जीक्यूट होता था, मीन्स दो तीन स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ते थे, बट इन दिस एनवायरमेंट सब कुछ इनबिल्ट दिया हुआ है। आईडीई का मतलब ही है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरमेंट, जिस भी एनवायरमेंट में आप आपकी एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रहे हैं वहां पर उस डेवलप करने के लिए, उस डेवलपमेंट करने के लिए प्रोग्राम के जो जो भी फीचर्स जरूरी लगेंगे दे हैव असेंबल्ड ऑल इन दिस पर्टिकुलर एडिटर, दिस इज द थिंग। तो वहां पर आप कौन कौन सी फाइल बनाएंगे उसके लिए भी वहां पर एक नेविगेटर है, प्रोजेक्ट विंडो होता है उस पर, प्रॉपर्टी बॉक्स, कंट्रोल टूल बॉक्स है, इसमें कंट्रोल आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करके कंट्रोल्स यूज कर सकते हैं, मींस कंट्रोल की कोडिंग करने की भी जरूरत नहीं, कंट्रोल बनाने की भी जरूरत नहीं, सीधे कंट्रोल्स को ड्रैग करना है, उनकी प्रॉपर्टीज अकॉर्डिंग टू यूजर प्रोग्राम में चेंज की जा सकती है।
ओके।
और वहीं पे प्रोग्रामिंग करके रन किया जा सकता है, एग्जीक्यूट किया जा सकता है, ऐसा होता है। पर नॉट नेसेसरी कि नेट भी सब जगह अवेलेबल हो जाए, बट द गुड वन नेटबिन वर्जन इज नेटबिन आईडीई 6.5.1। इसमें प्रोग्रामिंग अच्छे से की जाती है। इसपे प्रोग्रामिंग करने के लिए स्टार्ट पे क्लिक करते हैं, इंस्टॉल करना पड़ेगा तब, तो स्टार्ट ऑल प्रोग्राम नेटबिन देन नेटबिन आईडीई इस पाथ को हमें फॉलो करना पड़ेगा। देन फिर ये एनवायरमेंट खुलता है और यहाँ पे हम टाइप करते हैं या जो भी प्रोग्राम बनाना है वैसे बनाते हैं। और नेटबिन में कई सारे फीचर्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जीयूआई एनवायरमेंट हो जाता है। नोटपैड में कैसे मैम, हम सिर्फ लिख सकते थे, हमें कंट्रोल बनाना है तो भी हमें कंट्रोल के लिए लिखना पड़ेगा ना, पर्टिकुलर क्लास को कॉल करके उसके ऑब्जेक्ट को कॉल करना पड़ेगा। पर यहाँ पे हम वो जीयूआई एनवायरमेंट में काम करते हैं, मीन्स ग्राफिकल यूजर इंटरफेस एनवायरमेंट में काम करते हैं और कंट्रोल्स को ड्रैग करके ला सकते हैं। इसका जो एग्जीक्यूटेबल एडिटर है वो एकदम एडवांस होता है, इसमें वेब सर्विसेज भी हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, इसकी डिबगिंग इज ऑल्सो वेरी एक्सीलेंट, और इसमें जो भी विजार्ड होते हैं कोड जनरेशन के लिए और टूल्स जो है मैनेजमेंट करने के लिए हमारी प्रोग्रामिंग को बहुत इजी बनाते हैं।
ओके।
इसलिए नेटबिन यूज किया जाता है, बट अगर नेटबिन नहीं भी है तो भी हम नोटपैड पर सिंपली जैसे प्रोग्रामिंग करते हैं जेडीके को यूज करके वो तो कर ही सकते हैं, क्योंकि जावा पूरे फीचर्स तो प्रोवाइड कर ही रहा है इसलिए। और क्योंकि अभी नेटबिन में काम होता है इसलिए हम जावा को रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट भी कहते हैं।
ओके।
रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट इसलिए क्योंकि एक बार आपने ये डेवलप कर दिया, मींस डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर थ्रू द यूज ऑफ प्री प्रोग्राम टूल और विजार्ड, जैसे कि नेटबिन के अंदर है ऑलरेडी विजार्ड्स है, टूल्स है। ओके। देन प्री प्रोग्राम टूल्स और कंट्रोल आर सिंपली ड्रॉप्ड ऑन द स्क्रीन टू विजुअलाइज द डिजाइन और इंटरफेस, सिर्फ सिंपली हमें ड्रैग करना पड़ता है, तो दैट इज कॉल्ड रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो बहुत इजी प्रोग्रामिंग हो जाती है जावा में जब इस तरीके से करते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम द नेटबिन अगर हम वही प्रोसेस फॉलो करते हैं तो हमें जावा के प्रोग्राम को कोड को नोटपैड में लिखना पड़ता है या वर्ड पैड में किसी भी एडिटर में लिखना पड़ता है। देन फिर हमें वो फाइल सेव करनी होती है डॉट जावा। सपोज मैंने नाम दिया फर्स्ट प्रोग्राम तो फर्स्ट डॉट जावा।
ओके।
जावा इज द एक्सटेंशन। ओके। और कोशिश यही करनी चाहिए कि जब हम जावा का प्रोग्राम बना रहे हैं तो जिस क्लास का जो नेम दे रहे हैं सेम वही नेम हम जावा के प्रोग्राम का सेव करें।
ओके।
अदरवाइज कंपाइलर को कॉन्फ्लिक्ट होता है और वो क्लास ढूंढ नहीं पाता, बिकॉज जावा के अंदर वी कैन डिफाइन मोर देन वन क्लासेस एट अ टाइम। तो जिस भी क्लास के अंदर एग्जीक्यूटेबल फंक्शन होता है, मेन फंक्शन होता है, अभी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो उस क्लास के नाम से ही हमें जावा का प्रोग्राम सेव करना चाहिए डॉट जावा एक्सटेंशन लगाकर। फिर इसके बाद में हमें उसे कंपाइल करना चाहिए. कंपाइल वही हमें डोज प्रॉम्प्ट को खोल करके जेडीके के अंदर जाकर के कंपाइल किया प्रोग्राम, इसका मतलब सी. तो जावा सी, यहाँ पे जैसे ही हम जावा सी लिखते हैं तो कंपाइलर उस प्रोग्राम का बाइट कोड जनरेट करता है जिसका कि एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास. जैसे कि डॉट जावा एक्सटेंशन था पहले सोर्स प्रोग्राम का, वैसे ही बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है डॉट क्लास, डॉट सी एल ए. ओके, देन फिर इस डॉट क्लास को इंटरप्रेटर इंटरप्रेट करेगा, क्योंकि पहले कंपाइलर ने बाइट कोड में कन्वर्ट किया, बाइट कोड को इंटरप्रेटर कन्वर्ट करेगा ना. तो उसको कहते हैं डॉट जावा, मीन्स फाइनल एग्जीक्यूट फाइल कौन सी होती है, डॉट जावा. और जो कंपाइल होती है वो जावा सी. जावा सी जब कंपाइल होती है तो उसकी डॉट क्लास फाइल बनती है, इसका मतलब उसका बाइट कोड बन जाता है. फिर इंटरप्रेटर इस डॉट जावा डॉट क्लास पे काम करता है और डॉट जावा फाइल को एग्जीक्यूट करता है. ऐसा होता है. ठीक है, तो हम फॉर द एग्जांपल एक प्रोग्राम लेते हैं छोटा सा ही. हमने जैसे नोटपैड ओपन किया और नोटपैड में हम प्रोग्राम लिखेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जब हम प्रोग्राम लिखेंगे तो फर्स्ट लाइन प्रोग्राम की होती है. जावा का कोई भी प्रोग्राम बिना क्लास के नहीं लिखते. तो क्लास हम बना रहे हैं, ये कंपाइलर को कैसे पता चलेगा, क्लास कीवर्ड से. ये आगे पढ़ेंगे अपन कीवर्ड क्या होते हैं. तो क्लास एक कीवर्ड लिखेंगे सी एल ए एस एस क्लास. फिर उसके बाद हमें प्रोग्राम को जो भी नाम देना हो उस क्लास को भी वही नाम देंगे. जैसे कि मैंने पहले बताया फर्स्ट प्रोग्राम क्योंकि मैं बना रही हूँ तो मैं फर्स्ट लिख देती हूँ. तो नाउ आई हैव रिटर्न क्लास फर्स्ट. ठीक है, तो इससे क्या आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि हम एक क्लास बना रहे हैं जिसका कि नाम है फर्स्ट. ओके, देन वी विल स्टार्ट द कर्ली ब्रेसेस. ओके, मीन्स ये क्लास की बॉडी हुई. एक्चुअली जावा प्रोग्राम के दो पार्ट होते हैं मैम. फर्स्ट पार्ट तो अ क्लास डेफिनेशन और सेकंड पार्ट मेन मेथड. फर्स्ट पार्ट तो जो क्लास डेफिनेशन होता है एनक्लोजेस द एंटायर प्रोग्राम एंड और दूसरा जो मेथड होता है मेन मेथड वो कंटेन करता है बॉडी को. ठीक है, मीन्स मेन मेथड में ही एग्जीक्यूशन होता है और क्लास के अंदर जो भी आपको क्लास की डेफिनेशन देनी होती है आगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्लास की डेफिनेशन बहुत कुछ इंक्लूड होता जाता है. पर फर्स्ट ऑफ ऑल इन फर्स्ट लाइन आई हैव रिटर्न क्लास फर्स्ट, देन आई हैव स्टार्टेड कर्ली ब्रेसेस, देन कीवर्ड लिखेंगे पब्लिक, देन स्टैटिक इट इज ऑल्सो कीवर्ड, देन वॉइड इट इज ऑल्सो कीवर्ड एंड देन मेन एम ए आई एन मेन. मेन इज वॉट, इट इज द फंक्शन. किसी भी प्रोग्राम में सिर्फ एक ही मेन फंक्शन होता है, ये हमने पढ़ा है सी में भी सी प्लस में भी, सेम इट इज जावा में भी. देन मेन फंक्शन के पैरामीटर हम पास नहीं किए हैं मगर वहां पे हमें लिखना होता है स्ट्रिंग आग. वो क्यों लिखना होता है अभी मैं आगे बताती हूँ. ठीक है, तो अभी हमने फर्स्ट लाइन में लिखा क्लास फर्स्ट देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट, सेकेंड लाइन में लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, देन यहाँ पे हमने ब्रैकेट स्टार्ट किया मीन्स पैरेंथेसिस स्टार्ट किया जिसके की अंदर हमने लिखा स्ट्रिंग आग. एंड जस्ट कीप रिमेम्बर इन द माइंड कि जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज. तो पब्लिक का पी स्मॉल, स्टैटिक का एस स्मॉल, वॉइड का वी स्मॉल और मेन का एम वी स्मॉल, बट स्ट्रिंग का एस कैपिटल और आग्स का ए वी स्मॉल. ओके, देन फिर इसमें हम एग्जीक्यूट क्या करवाना चाहते हैं वो लिखते हैं. तो मेन फंक्शन के लिए हमने मेन फंक्शन की बॉडी भी लिखनी पड़ेगी. तो उसके लिए हमने उसका कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट किया. देन फिर हमने यहाँ पे लिखा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन. सिस्टम का एस कैपिटल, बाकी फिर सब डॉट लगा के और स्मॉल में ही रहेंगे. देन हमने पेरेंथेसिस स्टार्ट किया. अगर हम कुछ मैसेज प्रॉम्प्ट कराना चाहते हैं तो लाइक द सी प्लस प्लस और सी डबल कोट्स में लिखना होता है. तो पेरेंथेसिस के अंदर डबल कोट्स में सपोज मैंने लिखा वेलकम टू माय प्रोग्राम, देन डबल कोट्स क्लोज करके पेरेंथेसिस क्लोज, देन सेमी कॉलम, दिस इज द ब्रेक ऑफ द स्टेटमेंट. नाउ हमने दो कर्ली ब्रेजेस स्टार्ट किए, कीप रिमेम्बर दिस थिंग. एक कर्ली ब्रेजेस था क्लास की बॉडी के लिए, दूसरा कर्ली ब्रेजेस था मेन फंक्शन के लिए. ओके, तो हम पहले मेन फंक्शन वाला कर्ली ब्रेजेस क्लोज करेंगे, देन फिर हम क्लास वाला कर्ली ब्रेजेस क्लोज करेंगे. ओके, तो अभी मैंने सिर्फ तीन लाइनें लिखी है मैम. एक में क्लास का नेम डिफाइन किया है, क्लास फर्स्ट, सेकंड में हमने मेन फंक्शन लिखा है, थर्ड में मेन फंक्शन की बॉडी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. ओके, देन दोनों कर्ली ब्रेजेस वी हैव क्लोज्ड. नाउ नेक्स्ट स्टेप, वी विल सेव द फाइल. एज आई सेड अर्लियर कि जो हमने क्लास का नेम दिया है उसी नेम से हम सेव करेंगे. तो हमने क्लास का नेम दिया था फर्स्ट, तो वी विल गोइंग टू सेव दिस प्रोग्राम एज द नेम इज फर्स्ट डॉट जावा. फर्स्ट इज द नेम ऑफ द प्रोग्राम एंड जावा इज द एक्सटेंशन, मीन्स ये जावा की प्रोग्राम है इसलिए. देन अब हम उसे जब कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर को बताना पड़ेगा कि कंपाइल करेंगे तो जावा सी, जावा सी, देन फाइल नेम डॉट जावा, फर्स्ट डॉट जावा. ओके, जावा सी फर्स्ट डॉट जावा, ये कमांड हम लिखेंगे. तो यहाँ पर फाइल कंपाइल हो जाएगी. कंपाइल हो गई इसका मतलब उसका बाइट कोड जनरेट हो गया. अब उसके बाइट कोड को हम इंटरप्रेट करके मतलब एग्जीक्यूट करवाना है. तो एग्जीक्यूट कराने के लिए जावा लिखते हैं. तो सीधे सीधे नेक्स्ट लाइन में कमांड प्रॉम्प्ट पर हम लिखेंगे जावा फर्स्ट. फर्स्ट वो फाइल है, जावा मतलब हम उसे एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हैं. तो जो मैसेज हमने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन में लिखा था, वेलकम टू आर प्रोग्राम, वेलकम टू आर सॉफ्टवेयर, वट एवर, वो मैसेज हमें डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर.
ओके,
ये था एक छोटा सा प्रोग्राम ऑफ जावा का जो कि हमने लिखा और एग्जीक्यूट कैसे करना है वो हमने यहाँ पर देखा. अब इसमें जो जो भी कीवर्ड्स आए हैं मैं उनके बारे में एक बार बता देती हूँ.
ओके,
कि इसका क्यों हम यूज कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है.
ठीक है,
ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन वन में हमने क्लास का डिक्लेरेशन किया. तो इसके लिए हमने वहाँ पे कैसे पता चलेगा कि क्लास बना रहे हैं, इसलिए वी यूज देयर क्लास कीवर्ड. ओके, देन इन सेकेंड लाइन वी यूज मेन फंक्शन. इन जब भी कंपाइलेशन होता है ना, यहाँ पर ये बात नोटिस करने की है किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कि कंपाइलेशन तो प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन से होता है और एग्जीक्यूशन मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन से होता है. दोनों में डिफरेंस. कंपाइलेशन मतलब कि स्टैटिक वर्क कर रहे, एग्जीक्यूशन मतलब कि रन टाइम की बात कर रहे. ओके, तो जब भी एग्जीक्यूट होता है तो मेन फंक्शन की फर्स्ट लाइन से एग्जीक्यूट होता है. और जब भी कंपाइल होता है कोई भी प्रोग्राम तो प्रोग्राम की फर्स्ट लाइन से कंपाइल होता है. ओके, तो फर्स्ट लाइन में लिखा है हमने क्लास फर्स्ट, तो उसको कंपाइलर को समझेगा कि इस नाम की एक क्लास बनानी. फिर हमने लिखा है मेन मेथड, इसका मतलब यहाँ से एग्जीक्यूशन शुरू करना है. अब इसके अंदर हमने लिखा है void कीवर्ड. void का मतलब होता है कि दिस फंक्शन इज नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग. ओके, विदाउट रिटर्निंग एनी वैल्यू, दैट इज कॉल्ड void. इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है void. देन पब्लिक. पब्लिक हमने यहाँ पे क्यों लगाया है कि इससे ये पता चलेगा कि ये जो मेन मेथड है पब्लिकली डिफाइन किया है, मीन्स ग्लोबली इस पूरे प्रोग्राम में या किसी और दूसरे प्रोग्राम में भी अगर हम कॉल करेंगे तो वो कॉल होगा और एग्जीक्यूट भी हो जाएगा क्योंकि हमने इसको पब्लिक डिफाइन किया है. पब्लिक मीन्स दिस मेथड इज ग्लोबल. देन स्टेटिक. तो Static denotes that the main function is a class method that can be called without creating any object. जैसे कि अभी मैंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट की बात बताई थी कि हम सीधे सीधे यहाँ पे फंक्शंस को कॉल नहीं करते हैं जैसे कि सी में करते थे. हम यहाँ पर फंक्शंस को और डेटा को एक यूनिट मतलब एक क्लास के अंदर बाइंड करके रखते हैं, फिर उसका एक ऑब्जेक्ट बना करके फंक्शन को कॉल करते हैं. मीन इनडायरेक्ट कॉलिंग करते हैं हम ऐसा समझे, है ना. तो मेन फंक्शन को हमें इनडायरेक्ट कॉल करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए हमने उसको स्टेटिक बनाया है कि ये समझा जाए कि इसे हम डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं. इसका ऑब्जेक्ट बना करके कॉल करने की जरूरत नहीं है.
ओके,
ठीक है, तभी तो एग्जीक्यूट होगा ना ये. इसीलिए हमने यहाँ पर मेन फंक्शन को स्टैटिक लिखा. ठीक है, देन इसके बाद हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन. अब देखिए, हमने आपको बताया था कि यहाँ पे बहुत APIs हमने बनाए हैं. मीन्स ऑलरेडी लाइब्रेरी में इतनी सारी फाइल्स बनाई हुई हैं कि यूजर को सिर्फ वो कॉल करनी है. तो यहाँ पे सिस्टम जो है ना, ये पैकेज का नाम है.
ओके,
जहाँ पर कि आउट एक क्लास है, देन फिर उसका एक फंक्शन है प्रिंट एलन. प्रिंट एलन का मतलब होता है कि ये प्रॉम्प्ट करो. स्क्रीन पर डिस्प्ले करने के लिए हम प्रिंट एलन यूज करते हैं, ये प्री डिफाइन है. तो इस प्रिंट एलन की डेफिनेशन, इसका डिक्लेरेशन, इसका कोड सब कुछ आउट करके जो क्लास बनाई हुई है ना उसके अंदर है. और ये आउट वाली क्लास है सिस्टम पैकेज के अंदर. मीन्स इस सिस्टम पैकेज के अंदर हमने बहुत सारी क्लासेस बना करके ऑलरेडी स्टोर की हुई है. ये API का पार्ट है.
ओके,
हाँ, तो वहां से हमने सिर्फ पाथ बताया कि सिस्टम वाले पैकेज में जाकर के आउट वाले क्लास में जाकर के इस प्रिंट एलन फंक्शन को कॉल करना है. और कॉल करके जो भी उसकी डेफिनेशन है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी. यहाँ पे हमने उसकी डेफिनेशन नहीं लिखी, हमने डायरेक्टली कॉल किया और वो वर्क करेगा. जो भी हमने लिखा है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा.
ओके,
तो इस तरीके से फर्स्ट प्रोग्राम हमने एग्जीक्यूट किया. और मैंने कोशिश की है कि जितने अच्छे से ये समझ पाए स्टूडेंट्स, उनको समझ में आए, लर्नर्स को
जरूर.
और आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड.
थैंक्स मैडम. मैडम, आपने अच्छी तरह से इंट्रोडक्शन की है जावा प्रोग्राम की, डीप में जाके पूरा सविस्तर बताया है इसके बारे में, तो बहुत बहुत धन्यवाद.
थैंक यू. थैंक यू टू यू.
विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आजच्या कार्यक्रमामध्ये आपण इंट्रोडक्शन इन जावा प्रोग्रामिंग याविषयी माहिती ऐकलीत. आपल्याला मार्गदर्शन केलं होतं जगज्योती माहुल यांनी. ऐकत रहा यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचं यशवाणी. यानंतरचा कार्यक्रम काही क्षणातच.